भागवतम स्कंद सात अध्याय नौ श्लोक संख्या 44 संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मुख्य में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगर एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान के बिना और आपके चरण कमल की शरण ग्रहण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमल की शरण में आपस लाना चाहता हूं। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान की शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भवनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भवनाभावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है, नरक में जाकर के भी सुखी रह सकता है। अतः प्रह्लाद महाराज ने कहा, नैव विजय परदुरतय वैतरण्यम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 6:17-28 में हुई है। नारायण परा सर्वे न कुतस्सन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनः। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तथा नरक एक से ही है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की साथ व कृष्ण के सानिध्य में रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतः कर्मीजन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानीजन परमेश्वर के साथ तदाकर होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त की ऐसे कोई रुचि नहीं होती। वो हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रहता। प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वो लोगों को कृष्ण भवनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वो यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके। भले ही वह सभी प्रकार की मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्य में व्यस्त क्यों ना रहता हो, प्रह्लाद महाराज जैसे वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने की पक्ष में नहीं होते। प्रत्येक वह लोग में कृष्ण भवनामृत जागरूक करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रह्लाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यं तोदस्य शरणं भ्रमतो नोपस्से। मैं जानता हूं कृष्ण भवनामृत के बिना, अर्थात आपकी चरण कमल की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्मा जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की दास की कृपा से उसे कृष्ण भवनामृत का पता चल सकता है और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है अपितु भगवत धाम को अपर जा सकता है। जीवन की यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या बर्फ में जाकर तथा कभी ध्यान करने में रुचि नहीं रखते। जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है, नहीं वे शहर में जो तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं को अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने का प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन के सदस्य को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भवनाभावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे ब्रह्मावलेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदीक बंधु मत संगीन मत गुरु मत महाधना मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते।
असाधु साधुतादायन अति नीचो चताकर हाहा नमच्य कदाचिन मा प्रेमवत् कंठयस्पुरः। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा राधिका रमण शिव की। जय श्री श्री कृष्ण बलराम शिव की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय। तो ये श्रीमद् भागवतम की जो प्रह्लाद द्वारा भगवान नरसिंह देव को स्तुति के द्वारा संत करना, ये भगवान अपने भक्तों की उत्कर्ष को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार लीला करते हैं। इस प्रसंग को श्रीमद् भागवतम में ईशानु कथा कहा जाता है। ईश और उनकी अनुगत। तो इस अनुकथा में श्रील व्यासदेव ने भक्तों की उत्कर्षता को प्रतिपादन करते हैं कि जो भगवान की एकांतिक भक्त होते हैं उनका अंदर की भावना कैसे होती है। भक्त एक वेशभूषा नहीं है, भक्त एक संस्थागत नहीं है। भक्त जो होते हैं उनकी एक भावना होती है। जो संसार में सभी वस्तु की महानता को वो बढ़ाता है। भक्ति पुनान्ति वै निष्ठा। तो सबको पवित्र करने वाला होते हैं, जिनकी दर्शन से, जिनके संगलाप से, जिनके उद्गार से ये सारी जगत पवित्र हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जगत पवित्रम प्रगृहीत करचित। अगर कभी कोई व्यक्ति अपने को पवित्र करना चाहता है, पर संसार को पवित्र करना चाहता है, पहले प्रगुण ही तक अच्छी तरह से भक्तों की गुणगान करना चाहिए। अगर उस स्थान है जो भगवान की कथा कीर्तन तो होता है परंतु भक्तों की नहीं। कहते वो अधूरा रहता है। वो एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में जहां तक सिर्फ कौवों का भीड़ होता है। सदवाय संक्षेत्र उसंति। तो इसलिए वास्तविक पवित्र तीर्थ वो है जहां पर भक्त और भगवान के समावेश होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान के चरित्र के साथ साथ भक्तों के चरित्र से श्रवण कृत है। यही है ईश और अनु, भगवान और भक्तों का दिव्य चरित्र। विशेष करके ये सातवां स्कंध जो है इसको ईशान कथा के रूप में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसमें मुख्यतः दो प्रसंग हैं। एक है प्रह्लाद और नरसिंह और देवर्षि नारद और युधिष्ठिर। ये दोनों की बीच में चर्चाएं हुई हैं। ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर और ये नरसिंह किसी प्रकार का भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो धर्म को जो वो पालन करता है प्रह्लाद जैसे भक्त, उनको स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान नरसिंह देव जब प्रह्लाद की भक्ति में प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और नरसिंह देव ने जांचना की, प्रह्लाद तुम्हारे जैसे भक्त मरुस्थान को भी समुद्र से जल में अप्लावित कर सकता है। किकट स्थान, किकट मतलब जहां पर कुछ भी वृक्ष लता नहीं उगता है, कंटेले वृक्ष को छोड़ करके। तो उस स्थान में आप हरा भरा कर सकते हैं। और प्रहलाद, तुम्हारा जैसे पुत्र किसी कुल में जन्म लेता है तो उनकी त्रिशतक 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाते हैं। प्रहलाद, ऐसे भक्ति को प्राप्त करना देव ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, परंतु तुम इस पराभक्ति को प्राप्त कर लिए हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो आप कृपया मुझसे कुछ वर मांग लीजिए। परंतु प्रहलाद ने कहे, वर मांगने वाले व्यवसायी होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, और मैं स्वभावतः असुर कुल में जन्म लेने के कारण मेरी उसी में ही रुचि है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना जो काम के रूप में है। प्रभु, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, अगर यदि मुझे आप कुछ वर देना चाहते हैं तो इस संसार के मूल बीज जो काम है इसको नष्ट कर दीजिए, मेरे मन में किसी भी प्रकार अभिलाषा ना रहे। नरसिंहदेव ने कहे, जो मेरी भक्ति में पारायण होता है उनकी थोड़े से भी प्रयास निष्फल नहीं जाता है। तो इसलिए तुम कुछ मुझसे मांगो। तो प्रहलाद ने यही मांगे, अगर यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं वो दीजिए, संसार के दुख दे दीजिए जो मैं भोगता रहूं। भगवान नरसिंह पूछे कि प्रहलाद, तुम इसमें भयभीत नहीं हो, ये संसार के कष्टों को आपको भी झेले हैं, देखे हो इस स्वरूप को। तो प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं बे विजय पर दुरत्या दैत्यरण्या ना एव उद्वेगी, मैं दुख में विचलित नहीं हूं कि संसार के दुख वैतरण के समान है, जो बिरजा नदी के इस पार में है, जहां पर 28 प्रकार की नरक की प्रमुख वर्णन हुआ है। इसी प्रकार नरक के कष्ट से मैं उद्विग्न नहीं हूं, नन एव उत्तजे पर, इस पे भयानक कष्ट है। किसी प्रकार जब आप नरक लेकर के जाते हैं किसी जीव को, वो प्यासा व्यक्ति जब पानी मांगता है उसको लोहे की रस्सी में घिसरते हुए जमराज के दूत ने तप्त बालों पर लेके जाते हैं, और ये प्यासा व्यक्ति पानी मांगने पर उसको उगला हुआ लोहे डाल दिया जाता है उसके मुंह में, और 34,000 मील तक उनको इसी प्रकार कष्ट देते हुए लेके जाते हैं। फिर उसके बाद अपने पाप कर्म की वजह से जो जो प्रकार के सब कष्ट विधान है जमराज के दूत उनको प्रदान करते हैं। तो नरसिंहदेव कहेंगे, आपको डर नहीं है इस प्रकार कष्ट भुगतने के में, क्योंकि अनेक जीव अनेक प्रकार के ऐसे पाप में लिखते हैं। कहते नहीं, मैं तो दुरत्या वैतरण्य, इस वैतरणी रूपी दुख को मैं पार कर चुका हूं। नरसिंहदेव पूछे, कैसे? तदवीर जगायन महामृत मग्र चित्त, क्योंकि आपकी अमृतमय कथा को गान करने में मैं अभ्यस्त हो चुका हूं, इसलिए आपकी अमृतमय स्थिति ये नरक के कष्ट को पार कराने में समर्थ है, इस सभी क्लेशों को सभी नरक की यातनाओं को पार कर देगा, क्योंकि आपकी सारी चीज अमृतमय है और मेरी चित्त आपकी इस अमृतमय कथा में लग चुका है, मग्न चित्त। तो फिर नरसिंहदेव कह रहे हैं, क्या तो आपकी कुछ भी वर लेने की इच्छा नहीं है? आपकी मेरी अमृतमय कथा में कीर्तन में आप चिंतन में मग्न होकर के आप तो सुखी हो चुके हैं, तो कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कहते हाँ, परंतु मेरे एक दुख भी है, इतने सुखी होने के बावजूद भी मेरे अंदर एक दुख है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वसिद्ध हो चुका है वो सुख दुख में संभाव रखता है। जंगी न व्यथयन्ते च पुरुषम पुरुषवत्सव सम दुख सुखम धीर समृतत्वाय कल्पते। तब मेरी कथा के अमृत को पार कर चुके हैं फिर दुखी क्यों है? क्या भक्तों को सुख दुख के अनुभव नहीं होता है? कहते होता है। भक्त के अंदर की एक चेतना है, भक्त के अंदर की एक भावना है, ये भावना से हम सुख दुख के अनुभव करते हैं। परंतु कर्मी जन ज्ञानी जन व कामी जन उनके अंदर एक दूसरी प्रकार के दुख होता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब है। परंतु भक्त शांत होने पर भी उनके अंदर एक दुख है, वो दुख प्रहलाद जी व्यक्त करते हैं। स्वचेतनाभिमुखचेतस इन्द्रियार्थम कहते मैं उन लोग के लिए दुखी हूं जो विमुख चेतस जो आपकी चेतना से रहित है, जो आपकी भावना से रहित है। विमुख चेतन मुख हटा लिए हैं आपकी दर्शन से, आपकी कथा श्रवण से जो अपने कान को बंद कर लिया है, जो आपके सुंदर विग्रह के दर्शन से अपने मुख मर लिया है, जो अपने भक्तों के आलिंगन करने से रुचि को हटा लिया है। और ऐसे व्यक्ति किसमें रुचि रखते हैं? इंद्रियार्थम माया सुखाय, माया सुख के लिए जो संस्पर्श जनित इंद्रिय सुख है, जो भ्रामिक मात्र होता है, मरुस्थान में जैसे जल प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करने वाला है, वास्तविक माया सुखाय द प्लेजर इन मिरर्स। डेजर्ट में हाँ यदि कोई पानी प्राप्त करके सुखी होने का इच्छा रखता है कि मुझे पानी मिल जाएगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं माया सुखाय। और उन्होंने क्या करते हैं? विमुढ़ भारम उद्वहतो, उन्होंने दिन रात उस चिंता में मग्न रहकर कि कैसे मैं सुखी हूं, कैसे सुखी हूं, इस प्रकार दिन रात ये संसार की बोझा को ढोते चलते। तो आप कौन से सुख चाहते हैं? तो प्रहलाद जी व्यक्त करते हैं, हे देव, हे प्रभु, ऐसे तो अनेक अधात्मवादियों हैं जो क्या है, जो स्वार्थ निष्ठा न परार्थ निष्ठा, जिनकी कोई परार्थ दूसरे के उपकार करने की इच्छा नहीं रखते हैं, कि जो ऐसे इंद्रिय सुख भोगने वाले को मार्ग दर्शन करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे अनेक हैं। प्रायेण मुनय स्वविमुक्ति कामा, और उनकी लक्ष्य क्या है? ना ऐसे मुनिजन वो अपने ही मुक्ति की इच्छा रखते हैं, कैसे अपने जीवन को संसार से पार पाए, पार हो जाए। स्वविमुक्ति कामा, अपने मुक्ति की इच्छा रखने वाला, इसलिए उन्होंने क्या करते हैं? मौनम चरंती, मौन, मुख ना खोलना ही मौन है। मौनम चरंती, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं जब तक कोई मुख नहीं खोलता है तब वो मूर्ख का पंडित है, इसकी पहचान नहीं होता है। मुख खोलते ही उसका पोल खोल जाता है। बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, कहते जीवन तो एक सपना है, जिनकी शुरुआत सोने से ही होता है। अरे भाई कौन सोने के लिए बोल रहा है, तो जगते जाओ, आंख खोलो नहीं, हम एकदम आंख बंद कर देंगे, मुख बंद कर देंगे, तब वो कहेंगे ये पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो सिद्ध पुरुष है। कहते ऐसे व्यक्ति एकांत स्थान में जाते हैं, निर्जन रे घरे प्रतिष्ठा रे तारे भजन केवल कहता। भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव के उस पुस्तक में कहते हैं निर्जन घर एकांत स्थान, तब भी वो कहेंगे देखो ये किससे मिलते जुलते नहीं है, हमारी महाराज कितने महान है। ऐसे बहुत ही बड़े लोग को दर्शन भी नहीं करते हैं, उनके दिया हुआ भेंट छूते भी नहीं है, लेकिन दो चार चेला रख देते हैं, वो उठा लेते हैं पैसा। ऐसे मौन चरंती बिजल, भगवान गीता में तो ये कहे हैं कि जिनको ज्ञान प्राप्त करना है तो एकांत स्थान में रहना चाहिए। विविध देश सेवितम अरतिर जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्वत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम जतदन्यथा। तो वास्तविक विविध देश एकांत स्थान में रहना चाहिए ज्ञान आहरण करने के लिए, और ज्ञानी को एकांत में रहना चाहिए, एकांत हो जहां पर कोई दो ना हो, बा तीन ना हो, चार ना हो। तो इसलिए दत्तात्रेय ने जो 26 गुरु से जो शिक्षा ली, इसमें एक कुमारी कन्या अविवाहित कन्या थी, जिनको देखने के लिए कुछ लोग आए थे विवाह के लिए, और वो गरीब घर की थी, इसलिए अतिथियों की सेवा करने के लिए उन्होंने कुछ धान को ढेंकी, आप जानते हैं जो पहले समय था कुटने वाले, तो ढेंकी में उन्होंने वो धान को डाल करके कुटने के लिए प्रयास किया, तो उनकी जो हाथ में चूड़ियां थी वो आवाज करने लगी, तो वो कुंवारी कन्या ने सोचने लगी कि हमारे घर की गरीबपन अतिथियों को पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या की, हाथ में जो पहना हुआ चूड़ियों को निकाल दी और एक एक चूड़ियां रखी, तो फिर जब धान कुटने के लिए प्रयास की तो फिर ये एक और एक दोनों चूड़ियां फिर आपस में टकराने लगे। तब अवरुद्ध वयस में दत्तात्रेय ने, दत्तात्रेय भगवान ने उस कुंवारी कन्या से शिक्षा ली कि यदि दो लोग भी रहते हैं तो वहां भी आपस में टकराव होता है, तो इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि एकांत स्थान में रहे। परंतु हमारी रसी के आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हाँ जब कुंवारी रहता है तो वो अकेला रहनी चाहिए, उसे किसी से मिलना जुलना नहीं चाहिए, परंतु जब वो शादी करती है तो सिंदूर तो पहनती है, शंखा धारण करती है, सास ससुर देवर और सारी सभी लोगों के साथ उनको संपर्क रखना पड़ता है, संबंध स्थापन करना पड़ता है, तो उसी प्रकार जिसकी शादी भगवान से नहीं हुआ है वो नित्य नित्य ब्रह्म दर्शन में पोज करता है तो उसको तो एकांत में रहना चाहिए, परंतु जो परार्थ निष्ठा है, जो भगवान के साथ सब कुछ चुनने में इच्छा रखता है, उसको तो सुंदर वस्त्र पहन करके शंख और सिंदूर को धारण करके सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, तभी ये कृष्ण भावना वृत्ति पहचान है कि कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में बरे हैं, इसलिए पति के संबंध से सबके साथ अच्छा संबंध रखता है। परंतु प्रभुराज जी यहां कह रहे हैं स्वविमुक्ति कामा, ज्ञानी लोग ही अपने मुक्ति की चाह करते हैं, कर्मी जन तो अपने वो करना चाहते हैं, परंतु यहां एक प्रभुपाद तात्पर्य में एक सटल चीज दिए हैं कि विमुक्ति कामा वह व्यक्ति है जो पर्याप्त को जानते हैं कि ईश्वर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वह आचरण नहीं करते हैं। इनको प्रहलाद जी कहते हैं कृपण। जीवन को, जीवन के अर्थ को समझते हुए उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, ये है कृपण। और उनके उद्धार के लिए प्रहलाद जी कहते हैं न एका, मैं अकेला जाना नहीं चाहता, मेरे पास तो आओ, आपकी इतनी पूर्ण कृपा है कि आपको स्मरण करके आपके धाम पहुंचने के लिए मेरे पास समर्थता है। परंतु प्रभु मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं, जो श्लोक नंबर 42 में प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, आप हम सब पर अनुग्रह करिए ताकि ये जो संसार को भोग करने की जो इच्छा है वो नष्ट हो जाए। इसलिए जो विमुलान है, जो मूर्ख है, जो परार्थ को जानते हुए भी उसमें नहीं लगते हैं, उनके लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ वही है जिसमें भगवान की आराधना हो। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुरास आये बनिर्थमान। जिसकी मन गंदगी से भरा हुआ है वो शास्त्र की कदर करता है, वही अर्थ लेता है। बहिर्थ मानिना, हमेशा ही शारीरिक भाष्य को ग्रहण करता है, जो किसी भी प्रकार जीव के कल्याण के लिए उद्दिष्ट नहीं होता है। परंतु परार्थ निष्ठा रखने वाले वो असली स्वार्थ को जानते हैं। पंचमा, पहला स्कंध के पंचमा अध्याय श्लोक संख्या 22। इदं हि पुंसा तपसः आश्रितस्य वा सुप्तस्य सुष्टस्य च बुद्धिदत्तयः अभिचितार्थमात्मभिर्निरूपितम् जगत्तम श्लोक गुणान वर्णन। अभिच्युत अर्थ, जो वास्तविक बहिर अर्थ को नहीं जानता है, आंतरिक अर्थों को जानता है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग ने इसको निरूपण किए हैं, कभी भी निरूपित, वो क्या है, जहां जाओ वहां भगवान की गुणगान करो। जगत्तम श्लोक गुणान वर्णन। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में यह दर्शाते हुए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही प्रयोजन है। शहरी सभ्यता में भी उन्होंने लोगों के पास घर घर में पहुंच करके यही बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण की शरण लिया जाए, क्योंकि प्रह्लाद की अनुजाई इस भावना को ही पोषण करते हैं। नाम्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुभवसि। मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं प्रैक्टिकली कि लोग कैसे ऐसे भौतिक सुख के पीछे दीवाने होकर कि कितने कष्ट झेल रहा है। ये सबरे उठे टी न्यूज पेपर, गाड़ियां, बंगला, फिर नौकरी, थोड़ा से भोजन, फिर थोड़ा निद्रा। इसी प्रकार जीवन एक भव वैतरण्य, कि जैसे नदी के स्रोत बढ़ते जाता है, रोकता नहीं है, परंतु वैतरण्य एक दूसरा एक दृश्य है। इसमें बहुत सड़ा गला चीज है, डेड बॉडी है, क्या बोलते हैं, पस। ये पैतरण में ऐसा है, इतनी गंदगी है, इसको डाल देते हैं। खास करके बंबई शहर में एक नदी बहता है, जब भी महाराज जाते कहते यही तो है वैतरणी है, क्या नरक में देखना है, यहां भी साथ में एक वैतरणी बहता है, कितना मच्छर पैदा करता है। पर तो लोग इसमें रहना चाहते हैं, पर इस वैतरणी के पास रह करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त को क्या कहते हैं, कृष्ण की पवित्र संदेश में पहुंचाते हैं। बॉम्बे मंदिर बनाने के पहले वहां इतनी मच्छर भरा हुआ था, गिरिराज महाराज बोले प्रभुपाद हाउ यू कैन स्टे हियर, वी आर अ फॉरेन बॉडी, कैसे हम रह सकते इतनी मच्छर है। प्रभुपाद बोलते हैं देन हाउ यू विल बी प्यूरिफाई, कैसे अपने को पवित्र करोगी, शुद्ध करोगे। इसलिए जान बुझ करके कष्ट उठाना ही यही तपस्या है, अभी तपस्या ही हमको पवित्र करता है, क्योंकि प्रहलाद जी अनुजाई जान बुझ करके इस कष्ट को तकलीफ उठा लेते हैं, लेकिन घर में जब भी पता नहीं होता है कि हमारा सर पर कितना बड़ा फौज है। कहते अन्य दूसरे लोग नहीं जानते कृष्ण भावनामृत की जो टेक्निक है, कला है, ये सिर्फ भक्तों को ही पता है। बुद्धो शरणा अनिच्छ कृपणा फला ही तबा, जो कृपणा है जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं वो इस सूत्र को इस सूक्ष्म तक नहीं समझ सकते। जीवन को सर्वनाश करते हैं, कुछ ऐसे आराध्य वादियां हैं, जैसे हम कुछ साल पहले पदयात्रा में थे नासिक के पहले एक हम मंदिर में रुके थे, तो वो लिखा था कृष्ण शरण दास अपने नाम, और रात को हम जो बैल बांधने के लिए वहां गए कहके भाई यह मत बांधो बैल, उनके क्यों भाई क्या हो जाएगा इधर खाली पड़ा है, कहता नहीं यहां पर रास होगा। अरे बाबा रास तो वृंदावन में होता है, उस समय वो गुजराती लोगों का ये चल रहा ना डंडिया, डंडिया के समय था, तो कहे आज महाराज महाराज करेंगे। अच्छा ये कौन सी खास बात है, तो महाराज महाराज करेंगे तो बहुत बड़ा बातें नहीं है, तो चलिए कौन सी खास है। तो ठीक 8:30 बजे सब सज धज करके सब गोपियां आ गए और महाराज सिंहासन पर बैठे थे, तो उसके साथ बातें नृत्य सब हुआ। मैं कहा अरे ये कौन सा है महाराज, ये तो सर्वनाश है, लेकिन है ये कृष्ण शरण दास है, ये तो अपने को सर्वनाश कर रहा है। अरे दास कभी प्रभु को नकल नहीं करता, कि कौन सी खास है। तो ऐसे दुर्बुद्धियों हैं, उन्होंने अपने को बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करते हैं। प्रॉपर लिखते हैं कि छठवां आध्यात्मवादियों चिंतन को एक ईश्वरवादियों दार्शनिक तथा पर हम तो लोगों को आनंद दिए कहते हैं प्रहलाद जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं आध्यात्मवादी बनना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक कोई आपके शरण में नहीं आता है कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है। वो कितने भी महाराज कर ले कितनी भी खास कर ले, लेकिन आखिर में सर्वनाश ही है। मायावादी रे भाष्य सुन ले आए सर्वनाश। इसलिए श्रीमद् भागवत राम इसकी प्रमाण है कि भक्तों की भावना किस प्रकार होनी चाहिए। रामतीदेव का महान आध्यात्मवादी है, और जब भी किसी जीव को देखते थे उनके अंदर ईश्वर भावना जागृत करते थे। राजा होने पर भी वो कभी अपने ऐश्वर्य से मुक्त नहीं होते थे, पागल नहीं होते थे, किसी दुखियारी को देखते थे उनको कुछ दान देते थे, यहां तक कि अपने भोजन भी उनको दे देते थे। तो कई बार इसी वजह से उनके परिवार के लोग भूखे रहे। कभी सोच सकते हैं हम कभी अपने भोजन पानी किसी को दे सकते हैं? अरे अपना भोजन पानी बचा करके जो कुछ बचता है थोड़ा दान पुण्य कर लो। परंतु के राजा सब कुछ त्याग करके भूखा रहता है। और इसी प्रकार एक समय उन्होंने 48 दिन तक भूखे रहे और उसके बाद 48 दिन के बाद कोई एक प्लेट में कुछ भोजन सामग्री जो दूध और घी से बना हुआ था और थोड़े से जल लेके आए और रामदेव इस वजन को भगवान के प्रसाद रूप में स्वीकार करके अपने परिवार वाले को सब बैठ गए। और उसी समय एक ब्राह्मण ने आए और वो कहा, महाराज पहले तो ब्राह्मण को भोजन कराओ तब फिर व्रत का पूर्ण होगा। और रंतिदेव कुछ सोचे बिना कि ब्राह्मण आज भगवान के रूप में आए हैं और ब्राह्मण को दे कुछ हिस्सा। फिर जितने बचा रहा अपने परिवार के सदस्यों के साथ, तीन पुत्र पत्नी और वो, तो पांच लोक में हिस्सा बांटती है। और उसी समय एक शूद्र आया ने कहा, महाराज मैं भी भूखा हूं कुछ खिला। रंतिदेव अपने भोजन के हिस्सा से उस शूद्र को पेट भर के खिलाए। जब संतुष्ट हो गया फिर जब भोजन करने जा रहे थे उसी समय कुत्तों के साथ एक व्यक्ति ने पहुंचा और कहा, महाराज भूख में मेरा पेट जल रहा है, चूहा कूद रहे हैं, कुछ तो खिलाओ। रंतिदेव उसकी विकलता को देखते हुए वो सहन नहीं कर पाए और वो कुत्तों को भी खिलाए और उस व्यक्ति को भी खिलाए। उनके पास एक भी भोजन का एक कण भी बचा नहीं था, सिर्फ था एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त पानी। और वो पानी पीने जा रहे थे उस समय एक चंडाल ने आया, कह महाराज मुझे बहुत प्यास लग रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, कुछ तो पिला दो। और रंतिदेव उस चंडाल को भी भगवान के रूप में देखते हुए भगवत भावना से पूर्ण होकर के उस जल को दिए। लेकिन ये जल देने के पहले उन्होंने एक स्तुति कर रहे हैं भगवान को, वो जैसे प्रह्लाद जी कह रहे हैं कि मैं अकेला जाना नहीं चाहता हूं, मैं तो इन लोगों को आपकी शरण में लेकर के जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहे, नाकामये हम गतीश्वरं परं अष्टाधिजोक्तं पुनर्भवं आर्तिप्रवद्यं अन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखा। कहते प्रभु मैं ना कुछ भोग चाहता हूं, ना सिद्धि चाहता हूं, ना मुक्ति चाहता हूं, ना ईश्वर होकर की दूसरे को नियंत्रण करना चाहता हूं, ना अष्ट सिद्धि की मेरे अंदर कामना है, परंतु एक इच्छा है आरती प्रपत्ति। जो लोग आर्त हैं, जो कष्ट भोग कर रहे हैं अपने कर्म की वजह से, उनके हृदय में रह करके, देखिए परमात्मा सबके हृदय में है, परंतु भक्त जब वो चाहता है कि मैं जीव के अंदर में रह करके उनके कष्ट को भोग करूं, वो परमात्मा बनना नहीं चाहता है। परंतु परमात्मा जिस प्रकार दूसरे के उद्धार करना चाहते हैं, मां मैं कर्म शरणम गजा, तो उसी प्रकार भक्त भावना रखता है कि मैं भी उनके हृदय में रह करके इस ज्ञान दो कि सभी लोग भगवान के शरण में जाए। और रंतिदेव इस दुख को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनको जब दे दिए, और उसी समय स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और स्वयं नारायण उनके सामने प्रकट हुए जो परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो ये है भक्त की भावना। अम्बरीश महाराज एक दृष्टांत है। जब दुर्वासा जी इस प्रकार अम्बरीश महाराज की महाना तक नहीं समझ पाए तो भटकते रहे सुदर्शन की ज्वाला से, सभी लोग तक चल गए परंतु कोई उनको आश्रय नहीं दे सका। परंतु अम्बरीश से प्रार्थना कर रहे थे कब उनकी दुख आरती समाप्त हो जाएगा और कब उनके दर्शन करके मैं भोजन करूंगा। उस समय तक वो भगवान के शरण में गए और भगवान से प्रार्थना किए कि मुझे इस सुदर्शन की ज्वाला से मुझे बचाइए। तो भगवान ने 6 श्लोक में उनको समझाए कि मेरी भक्त की भावना कैसे होता है और इसे भक्तों को छोड़कर कि मैं कैसे अकेला रह सकता हूं। जैसे भक्त चाहता है मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता हूं, मैं किसके साथ रहूं, ऐसे दृष्टों के साथ जिनको मैं कृष्ण भावनामृत शिक्षा देने का मुझे अवसर प्राप्त हो। ये दार दार पुत्रात् प्रारवित्तमिमं परं हित्वा मं शरणं जातं कथं तं तत्रुमत्सहे। मैं ऐसे भक्तों को कैसे त्याग कर सकता हूं क्योंकि उनकी कोई मित्र नहीं होते हैं, ना कोई पुत्र होता है, कोई पत्नी होता है, ना कोई घर होता है, ना कोई प्रेम परवश कोई गाड़ियां होता है, सब कुछ छोड़कर की हित्वा शरणं जातं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान आत्मनिर्भर है लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आत्माराम होने पर भी अपने भक्तों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण अर्थ जगह भी वृंदावन में भगवान कृष्ण स्वयं में पूर्ण है किंतु वह अपने दिव्य आनंद को वर्धित करने के लिए अपने भक्त ग्वाल तथा गोपियों का सहयोग चाहते हैं। ऐसे सुंदर भक्त जो भगवान की लाभिनी शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। भगवान आनंद से पूर्ण है परंतु भगवान चाहते हैं कि मेरे आनंद को बढ़ाने वाला कौन है, भक्त लाभिनी शक्ति को बढ़ाने वाला है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान न केवल अपने भक्तों की संगति का आनंद लेते हैं अपितु अनंत होने के कारण वे अपने भक्तों की संख्या को भी असीमित बनाना चाहते हैं जिसको कहते हैं रस। इस तरह वे अमृत तथा विद्रोह जिनको भगवत धाम आपस जाने के लिए प्रेरित करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी शरण में जाया जाए क्योंकि अनंत होने के कारण वो अपने भक्तों की संख्या को असीम बनाना चाहते हैं। यही है कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लक्ष्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान की शुद्ध भक्तों की संख्या को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास है। यह निश्चित है कि जो भक्त भगवान को संतुष्ट करने की इस प्रयास को पूरा करने में सहायता होते हैं सहायक होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नियंत्रक बन जाते हैं, वो ही भगवान की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि भगवान सर्वसृष्टि से पूर्ण है किंतु अपने भक्तों के बिना उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी धनी पुरुष के परिवार में पुत्र नहीं होता तो वह अपने को सुखी अनुभव नहीं करता, इसलिए अपने इस सुख की पूर्ति के लिए वो कभी कभी दत्तक पुत्र बनाता है। शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद का विज्ञान ज्ञान है अतः वो भगवान के दिव्य सुख को बढ़ाने में सदा लगा रहता है। अभी टेक्निक समझ में आया, यदि वास्तविक कोई सुखी होना चाहता है वो सिर्फ हाथ बटाएं कि कैसे भगवान की इच्छा की पूर्ति हो, यही सुखी होने की कला है कि भगवान जो चाहते हैं इसको पूर्ति करने के प्रयास ही एक दिव्य आनंद है। पूरा ना कर पाए, हम सिर्फ प्रयास मात्र करें। और शुद्ध भक्त इस कला को जानता है, इसलिए प्रभुपाद बोले प्रीचिंग इज एसेंस। और यही हमारा मोमेंट है, हरे कृष्ण मोमेंट का जो अर्थ है क्या है, मोमेंट। श्री चैतन्य मनविष्टम स्थापितम तेन भूतल, ये मोमेंट है। जाओ घरे घरे गया तुम्हें मांगी है ये विज्ञान, और प्रभुपाद ने कहे घर घर में जाकर के पुस्तक वितरण करो। ये मोमेंट, यही मूवमेंट है, यही गति है, ये परंपरा से फ्लो होके आ रहा है, मूवमेंट गति हो रहा है। और हरिदास ठाकुर को भी यही कहे कि जगत में तो अनेक लोग हैं जो सिर्फ अपना अपना ही मुक्ति का इच्छा रखते हैं, परंतु आप ऐसे हैं जो दूसरे के उद्धार करने के साथ साथ अपना भी उद्धार कर रहे हैं, अर्थात अपने आचरण करके दूसरे को सिखा रहे हैं। कहते महाप्रभु मैं तो बहुत नीच अधम हूं, जवान कुल में जन्म लिया हूं, आप मुझे इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जैसे भक्त केवल दर्शन, आप जैसे भक्तों के दर्शन प्राप्त करने से जगत उद्धार हो जाता है। तो फिर एक बार हरिदास ठाकुर जब अद्वैत आचार्य घर में थे, तो अद्वैत आचार्य प्रतिदिन हरिदास ठाकुर के पास लेकर के कुछ प्रसाद देते थे। तो हरिदास कहे है आचार्य अब ये क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, आप ऐसा मत करिए क्योंकि लोग समाज में मेरे बेइज्जत करेंगे। और हरिदास ठाकुर कहते कि आपकी व्यवहार तो अलौकिक है, सामान्य जनता से परे है, परंतु मेरे जैसे रक्षा हो तो इसी प्रकार के आप कुछ कार्य करें। तो आदित्य आचार्य कहते हैं आचार्य कहने तुम्हें न कर भाई, सही आचार्य वही शास्त्र मत भाई, जो शास्त्र का अभिवर्त है उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। तुम्हें तो खाइले कोटि ब्राह्मण भोजन, ये तो बलि सात पात्र कराइला भोजन। तो कहेंगे क्यों आप ब्राह्मण को भोजन दिए बिना मुझे क्यों दे दिए पहले, तो ब्राह्मण को अपमान होगा। तो आदित्य आचार्य कह रहे हैं कि आप भोजन करने से करोड़ ब्राह्मण का भोजन हो जाए। ब्राह्मणानां सहस्रेभ्य सत्र याजि विशिष्यते, सत्र याजि सहस्रेभ्यं सर्व वेदांत पारगः, सर्व वेदांत वित्कोट्यं विष्णु भक्तं विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्य एकांतिको विशिष्यते। यज्ञ करने के लिए योग्य ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण से बढ़कर है, और ऐसे ब्राह्मण से भी बढ़कर वो है जिसने सारे वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया है। ऐसे अनेक ब्राह्मण में ऐसे जो भगवान विष्णु का भक्त होते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और ऐसे अनेक वैष्णव में से जो भगवान की सेवा में पूर्णतया लगा रहते हैं वही सर्वोत्तम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो सन्यासी शरीर त्याग किया है अगले जन्म में उसको विदेश में जन्म मिलेगा और हरी पुस्तक वितरण करेगा। तो जो सतत सेवा में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि जगत निस्तार लागी करे न चिंतन, अवैष्णव जगत केवल वैवे मोचन। क्योंकि आप हमेशा ही सोचते हैं इस बद्धजीव का कैसे उद्धार होगा, इसलिए आप ही वास्तविक वैष्णव में श्रेष्ठ है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की जो परंपरा है एवं परंपरा प्राप्त है, तो वही शिक्षा को श्रील प्रभुपाद ने हमको डिलीवर की, और हम सिर्फ पुस्तक के लिए पुस्तक लेकर के उसको डिलीवर करना चाहिए। नहीं तो ये माया की जो भ्रामक जाल है उसको इससे निकलना बहुत कठिन हो जाए। ये तो माया जाल है, फिर लोगों का बाप जाल, इतने चतुराई से बोलते हैं कोई भी उस जाल में फंस जाए, कहते हाँ वही भी सही। इसलिए श्री कृष्ण जाने के बाद जो अंधकार था, ये सिद्धांत के अंधकार, इसको श्रीमद् भागवतम दूर कर रहा है, और ये सिद्धांत को यथार्थ पढ़ना समझना, फिर इसको जैसे प्रभुपाद ने बहुत प्रचार करने के लिए आदेश दिए हैं, तो उसी सिर्फ कृपा के शेल्टर में रहना चाहिए। जैसे अर्जुन को कुछ करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा है तस्मात् उत्तिष्ठा कुन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। और ये युद्ध करके आप जस को प्राप्त करो, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्य युद्ध वीरा मया अतस्त्वां जयमं प्रतिष्ठां युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना तस्मात् उत्तिष्ठा जसो लभस्य जित्वा शत्रुं भंग्यं राज्यं समृद्धं। इसलिए सिर्फ आप युद्ध को निमित्त बनाकर धनुष उठा लो, पर सारे काम मेरे द्वारा हो चुका है, द्रोण भीष्म कर्ण सबको मार चुका हूं, सिर्फ तुम्हारे जस के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं, कह रहा हूं कि तुम गांधी धनुष को उठाओ और रथ पर बैठ जाओ, इतना करो, अब मैं तो स्वयं सारथी हूं। इसलिए एक महान भक्त का परिचय होता है युद्ध गुण में, जब युद्ध करते करते धर्म की रक्षा के लिए शरीर त्याग करता है, वृतासुर जैसे असुर होने पर भी उन्होंने इंद्र के सामने असुरों के पक्ष में रह करके वही उद्गार कहे, न नाग पृष्ठम न छपार मृष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम मन स्मरेतासु पति गुणास्ते गुणिंद कर्म कर दुका। ये युद्ध गुण में रहते हुए मैं अपने पति को स्मरण करूं, तो इंद्र को शर्म आ गया, अरे भाई मैं तो अपने आसन के लिए रासन के लिए मैं चिंतित हूं, लेकिन ये असुर होने पर भी देखिए भगवान के चिंतन में लगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इंद्र की भावना असुर था, जबकि वृतासुर की भावना युद्ध गुण में रहते हुए भी भगवान के विषय महसूस था। तो ऐसे महान भक्त जो संसार में रहते हुए कृष्ण भावनामृत को प्रचार करते हैं, वो वास्तविक क्या है, वो किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो, किसी प्रकार बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उनकी भावना क्या है, दैवी भावना। तत्र रसामृत तत्त्वस्य, इस प्रकार भावना के रस को आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवतम है, और इस भावना को हम अपने हृदय में पोषण करें, तब फिर हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं और दूसरे को हम इस भावनामृत में भावित करा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रखरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, नैतायिक गौर हरि प्रेमानंद।